नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर 16 से 31 जुलाई का अंक। मैं हूं मुनीष शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
दोस्तों, बीते दशक में भारत ने वैश्विक मंच पर न सिर्फ अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का लोहा दुनिया को मनवाया, बल्कि संकट की घड़ी में अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया। क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में मौजूद हर भारतीय नागरिक सिर्फ राष्ट्रदूत ही नहीं, बल्कि देश के लिए अमूल्य भी है। दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की चिंता, उनका कल्याण, उनकी सुरक्षा आज नए भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। और यही वजह है कि चाहे कहीं प्राकृतिक आपदा आए या अंदरूनी बाहरी संघर्ष के कारण अस्थिरता हो, नए भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित सकुशल स्वदेश लाकर संदेश दिया है, प्रत्येक भारतीय महत्वपूर्ण है। हर भारतीय की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। इसराइल ईरान संघर्ष के दौरान इन दोनों ही देशों में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के साथ भारत सरकार ने एक बार फिर अपनी यही प्रतिबद्धता साबित की है।
आपको याद होगा कि इससे पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जीवनदायी मिशन ऑपरेशन गंगा चलाकर 20,000 से अधिक लोगों की सकुशल वापसी कराई गई थी। यही नहीं, भारत ने अपने परंपराओं का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी निभाया है। दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आई तो भारत ने प्रभावितों का साथ निभाया है। यही कारण है कि आज नए भारत के नेतृत्व के प्रति भारतीय नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब ये विश्वास हो गया है कि दुनिया में वे कहीं भी हों, वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। नया भारत किस तरह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, यही इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। बीते 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक गतिशील और परिवर्तन आधारित विदेश नीति को आकार दिया है, जिसका मंत्र है राष्ट्र प्रथम और विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत की विदेश नीति नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर है। इसे एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीतियों से सशक्त बनाया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
हमने इंडियन डायस्पोरा से संवाद के मायने को और संवाद के तरीके दोनों बदल दिए हैं। अब विदेशों में भारत के दूतावास और काउंसलेट सिर्फ सरकारी कार्यालय नहीं, बल्कि आपके पहले साथी की भूमिका में है। विदेश में काम करने वाले साथियों के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मदद ई माइग्रेट, विदेश जाने से पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, प्रवासी भारतीयों की बीमा योजना में सुधार, सभी पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड की सुविधा, ऐसे तमाम कार्य किए गए हैं जिन्होंने प्रवासी भारतीयों को विदेश जाने से पहले और बाद में काफी मदद की है। हमारी सरकार ने इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड को भी मजबूत किया है। विदेश में कई नए शहरों में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र भी खोले गए हैं।
भारतीय छात्रों और नागरिकों के चेहरों पर युद्धग्रस्त क्षेत्र के संकट से स्वदेश वापसी का सुकून भरा ये भाव उस संकल्प का प्रतीक बन गया है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा वर्तमान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लौटे छात्रों ने भी कुछ इसी तरह भारतीय तिरंगे की ताकत को महसूस किया था और स्वदेश वापसी का सुकून उनके चेहरों पर था। अब ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को सकुशल स्वदेश वापस लाने का मिशन शुरू किया और इसी मिशन के तहत 19 जून को पहला विमान 110 भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित वापस लेकर पहुंचा। इसमें 90 छात्र जम्मू कश्मीर से थे। निसंदेह ये भारतीयों के लिए गौरव की बात है और सीना गर्व से चौड़ा होने का एहसास है। दुनिया में कहीं भी संकट आया और भारत ने जिस तरह से राहत बचाव का ऑपरेशन चलाया, उसके बाद स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की ऐसी अनगिनत कहानियां बताती हैं कि कैसे हर संकट में नए भारत का नेतृत्व अपने लोगों के साथ खड़ा है, उसे सुरक्षित स्वदेश वापस लाने का साहस रखता है। यही वजह है कि वर्तमान में ईरान इजराइल का संकट हो या कुछ वर्ष पहले रूस यूक्रेन का संघर्ष हो, भारत ने अपने नागरिकों को हमेशा यही संदेश दिया, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, निराश न हो, आस न खोना, भारत सदैव आपके साथ खड़ा है।
दरअसल प्रत्येक भारत नागरिक राष्ट्र और उसके नेतृत्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको 2017 के एक ट्वीट से समझा जा सकता है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 8 जून 2017 को किसी भारतीय की ओर से मदद को लेकर पूछे हुए सवाल के जवाब में कहा था, अगर आप मंगल ग्रह पर फंसे हैं, तो वहाँ भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति हो, या फिर 2020 में कोविड जैसी महामारी के बीच अपनों को स्वदेश लाने के लिए चलाया गया वंदे भारत मिशन, लाइफलाइन उड़ान मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, या फिर 2016 में दक्षिणी सूडान में ऑपरेशन संकट मोचन, 2015 में यमन संकट के दौरान ऑपरेशन राहत, 2015 में नेपाल भूकंप के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन मैत्री, या फिर इंडोनेशिया में भूकंप सुनामी के दौरान चलाया गया ऑपरेशन समुद्र मैत्री। भारत ने सदैव हर भारतीय है महत्वपूर्ण के मंत्र को अपनाकर अपने लोगों की स्वदेश वापसी कराई।
जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कब खत्म हो जाए, इसका डर वही बता सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच जब छात्रों के छात्रावास के ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हों, तब मन मस्तिष्क में कैसा डर उत्पन्न होता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों और छात्रों के मन में क्या चल रहा होगा, उन्हें स्वदेश वापस लौटने वाले छात्र छात्राओं के उदाहरणों और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से आए उनके विचारों से ही समझा जा सकता है। ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने 19 जून को बयान जारी करके कहा कि तनावग्रस्त क्षेत्र से लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों को वापस लेने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट, कंट्रोल रूम नंबर और ईमेल आदि जारी किए गए। भारतीय दूतावास पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका था। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता मिल सके।
इसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मिसाल बना था भारत का ऑपरेशन गंगा। सबको सकुशल वापस लाने के विजन के साथ ऑपरेशन गंगा मिशन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और निकासी पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था, यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षा और निकासी प्राथमिकता है। छात्रों की निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि मुश्किल समय में भारतीय को स्वदेश लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इसीलिए युद्ध के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर भारतीयों की कुशल वापसी की राह बनाई। इस मिशन की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद हो चुका था। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाक गणतंत्र को अपना केंद्र बनाया। किसी भी भारतीय को मुश्किल न हो, सबको स्वदेश वापस लाने की मुहिम में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद मानवीय सोच को साकार किया और अपने 4 तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह को इन देशों में भेजकर भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।
ऑपरेशन सिंधु हो या ऑपरेशन गंगा, सक्रियता और एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते बचाव कार्य को सजगता के साथ पूरा करना नए भारत की नई नीति बन चुकी है। जब मार्च 2020 में कोविड महामारी ने दुनिया भर में दस्तक दी, तब अपने नागरिकों के साथ साथ अन्य देश के नागरिकों को भी सकुशल स्वदेश वापस लाने में भारत सरकार के मिशन की दुनिया भर में सराहना हुई। जब दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए लाखों भारतीयों की स्वदेश वापसी कराई।
इस मिशन के जरिए चीन, ईरान, इटली और जापान जैसे देशों से न सिर्फ भारतीयों को निकाला गया बल्कि अन्य 50 से ज्यादा देशों के नागरिकों को भी भारत ने सुरक्षित निकाला। इतना ही नहीं, कोविड के समय जरूरी दवाइयों को 150 से ज्यादा देशों को भेजना हो या फिर कोविड से लड़ने के लिए बनी वैक्सीन दुनिया के और देशों को उपलब्ध कराना, भारत ने हमेशा दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। और यही वजह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत को हनुमान की संज्ञा दी, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत की प्रशंसा की। भारत के मानवीय दृष्टिकोण की वजह से दुनिया के देशों ने उसे ग्लोबल लीडर मानने में कोई संकोच नहीं दिखाया।
ऑपरेशन सिंधु के जरिए युद्ध के मैदान में वतन वापसी के लिए 3 भारतीय वायुसेना के विमान सहित 19 विशेष उड़ान का उपयोग किया गया। 14 OCI कार्ड धारक, 9 नेपाली नागरिक, 4 श्रीलंकाई नागरिक और 1 भारतीय नागरिक के ईरानी जीवन साथी को भी ईरान से निकाला गया। ईरान में 10,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, इनमें से लगभग 6,000 छात्र हैं। इसराइल के साथ संघर्ष को देखते हुए भारत ने 18 जून को ऑपरेशन सिंधु की पटकथा लिखी। मकसद था हर भारतीय को सुरक्षित वतन वापस लाना। इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भी दूतावास में 19 जून को एडवाइजरी जारी कर निकलने के इच्छुक लोगों को इसके लिए जरूरी मदद का ऐलान किया।
जिन भारतीय नागरिकों ने दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए एक लिंक भी जारी किया गया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आर्मेनिया स्थित मिशन के साथ मिलकर ईरान के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से नागरिकों को सक्रिय रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शुरू किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष भी भारतीय नागरिकों के संपर्क में रहने के लिए स्थापित कर दिया गया। ईरान का बॉर्डर 7 देशों से लगता है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक। इसके अलावा समुद्री सीमा ओमान के साथ है। भारत ने अपने लोगों को निकालने के लिए आर्मेनिया का रास्ता चुना। इसके तहत ईरान से आर्मेनिया बॉर्डर तक लोगों को सड़क और फिर राजधानी येरेवन से हवाई मार्ग से दिल्ली लाने का रास्ता चुना गया। 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान 19 जून की सुबह दिल्ली पहुंचा। ईरान ने भी एक विशेष कदम उठाते हुए भारत के निकासी ऑपरेशन को सहज बनाने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। 30 जून तक ईरान से 3,597 भारतीय और इसराइल से 818 भारतीय लाए गए। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते ही रह जाते हैं।
श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है। इसका एक हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बेशकीमती सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।